आज हम एक बहुत ही मतलब जरूरी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल,
नारी उत्थान, जिसे वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी ने कहा है समय की सबसे बड़ी आवश्यकता
जी।
और हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये उन्हीं की पुस्तक पर आधारित है, नारी उत्थान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता।
हाँ, और ये विषय तो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। वंदनीय माता जी ने बहुत गहराई से इस पर लिखा है अपनी किताब में।
बिल्कुल, तो हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जरिए हम वंदनीय माता जी के विचारों को समझें और ये जानें कि वो क्यों मानती थीं कि नारी का विकास समाज के लिए इतना इतना महत्वपूर्ण है। वो कहती हैं कि ये समस्या शांत दिखने के बावजूद सबसे प्रमुख है और तुरंत समाधान मांग रही है। ये बात थोड़ी थोड़ी चौंकाती है क्योंकि समाज में और भी तो कितने मुद्दे दिखते हैं, है ना?
हाँ, ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है। वंदनीय माता जी समझाती हैं कि ये जो शांति है ना, ये भ्रामक हो सकती है।
अच्छा।
हाँ, जैसे जैसे किसी फोड़ों के ऊपर मान लीजिए पपड़ी जम गई हो, पर भीतर तो मवाद पक रहा है।
हाँ हाँ,
तो फिर वो ऊपरी शांति के क्या मतलब। वो कहती हैं कि नारी समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं, ये सिर्फ लड़ाई झगड़े या उपद्रव वाली बात नहीं है।
तो फिर उनके हिसाब से समस्या का असली रूप क्या है?
असली समस्या है उनके अनुसार आधी मानवता की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल न हो पाना, उनका दबा रह जाना, मतलब अनुत्पादकता। सोचिए, जब समाज का इतना बड़ा हिस्सा मतलब आधी आबादी अपनी पूरी क्षमता से योगदान ही नहीं दे पा रही, तो ये पूरे समाज के लिए कितनी बड़ी हानि है।
हाँ, ये तो है।
पुस्तक में उन्होंने दूसरे देशों से तुलना भी की है, पर यह भी साफ किया है कि भाई भारतीय महिलाओं के पिछड़ेपन की अपनी अलग वजह है, अपने अलग कष्ट हैं।
और इसकी वजह क्या बताती हैं वंदनीय माता जी? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था हमारे यहाँ?
नहीं, वो बताती हैं कि एक अंधकार युग आया था बीच में।
अच्छा।
जब वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला एक तरह का जंगली कानून सा चलने लगा, तो उसमें शारीरिक रूप से नारी थोड़ी कमजोर होने के कारण शोषण का शिकार हुई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसी स्थिति को भाग्य कह दिया गया, या परंपरा, या भाई ईश्वर की ही मर्जी है।
मतलब अन्याय को ही सामान्य बना दिया गया।
हाँ बिल्कुल, उसे सामान्य मान लिया गया।
तो बहुत बहुत गंभीर बात है। किताब में कानूनी अधिकारों की भी बात आती है, लेकिन वंदनीय माता जी कहती हैं कि कानून होने पर भी एक खास तरह की सोच है जो हावी रहती है।
बिल्कुल सही, वो उसे सामंती सोच कहते हैं।
सामंती सोच।
हाँ, मतलब वो मानसिकता जो नारी को पुरुष की संपत्ति समझती है, या बस आश्रिता, सहारे की मोहताज, एक स्वतंत्र, एक सक्षम इकारी के रूप में नहीं देखती।
हाँ,
और ये सोच देखिए आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समाज में है।
हाँ, दिखती है।
तो वंदनीय माता जी मानती थी कि भाई जब तक ये सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक कानूनी अधिकार भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाएंगे।
और शायद इसी सोच से वो पुरुषों की मालकियत वाली भावना पैदा होती है, जिसका जिक्र भी है किताब में।
हाँ हाँ बिल्कुल, पुस्तक में इस मालकियत वाली मानसिकता की बहुत कड़ी आलोचना है। गांधी जी का भी एक उदाहरण दिया गया है उसमें।
हाँ, मैंने पढ़ा
कि कैसे नारी का जीवन बस पुरुषों की सेवा और उनके मनोरंजन तक ही सीमित कर दिया गया है, जो कि एक बर्बर स्थिति है। वंदनीय माता जी इसे मानवता का अपमान मानती थी।
तो फिर इस गहरी मतलब जड़ जमा चुकी समस्या का समाधान क्या है? वंदनीय माता जी क्या रास्ता बताती हैं?
देखिए, वो मुख्य रूप से दो चीजों पर सबसे ज्यादा जोर देती हैं।
किन चीजों पर?
एक तो शिक्षा और दूसरा आर्थिक स्वावलंबन।
शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन।
हाँ, उनका मानना था कि सही मायनों में शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नारी ही अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपनी पहचान बना सकती है और समाज को दिशा भी दे सकती है।
यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं होगा ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वंदनीय माता जी के लिए शिक्षा का अर्थ बहुत बड़ा था, मतलब व्यक्तित्व का विकास, नैतिक बौद्धिक उन्नति, व्यवहारिक समझ।
अच्छा।
ऐसी शिक्षा जो नारी को आत्मविश्वास दे, उसे उसकी अपनी शक्तियों का एहसास कराए। और आर्थिक स्वावलंबन का मतलब भी सिर्फ पैसा कमाना नहीं था उनके लिए, बल्कि उस पैसे का सही इस्तेमाल करना, परिवार और समाज के आत्मिक विकास में लगाना।
ये दिलचस्प है, वो नारी को परिवार निर्माण की धुरी मानती हैं। इस विचार को थोड़ा और समझाएंगे, मतलब ये धुरी वाली बात।
हाँ, उनका तर्क ये था कि जैसे जैसे प्राण के बिना शरीर बेकार है ना,
हाँ,
वैसे ही एक सुसंस्कृत और समर्थ नारी के बिना परिवार अधूरा है। और परिवार क्या है? समाज की पहली इकाई।
सही बात है।
तो अगर परिवार मजबूत होगा तो समाज भी मजबूत होगा, राष्ट्र भी मजबूत होगा। और परिवार को मजबूत बनाने की सबसे अहम जिम्मेदारी किसकी है? नारी की। वो कहती थी कि सुसंस्कृत माताएं ही सुयोग्य संतानें दे सकती हैं। जैसे उदाहरण देती थी वो, राम के लिए कौशल्या जैसी माँ, कृष्ण के लिए देवकी, अभिमन्यु के लिए सुभद्रा, ऐसी माताओं की जरूरत है।
अच्छा, यानी वो नारी के विकास को सीधे सीधे समाज और राष्ट्र के भविष्य से जोड़ रही थीं।
बिल्कुल, निश्चित रूप से। इसीलिए तो वो पर्दा प्रथा जैसी जो कुरीतियां थीं, उनको हटाने की बात करती थीं, नारी को समान अधिकार और सम्मान देने की बात करती थीं। उनका मानना था कि अगर नारी को विकसित होने का पूरा अवसर मिले तो समाज की कई दूसरी समस्याएं वो अपने आप हल हो जाएंगी।
अच्छा,
ये सिर्फ बराबरी का सवाल नहीं है, ये पूरी मानवता की प्रगति का सवाल है। आप आधी मानवता को पीछे रखकर पूरी मानव जाति को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं?
सही कहा। तो एक तरह से सार ये हुआ कि वंदनीय माताजी के अनुसार नारी उत्थान सिर्फ समानता का प्रश्न नहीं है,
नहीं,
बल्कि ये परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति की नींव है।
बिल्कुल, कि वो नारी उत्थान को विश्व कल्याण के लिए अनिवार्य मानती थी।
वंदनीय माताजी परिवार निर्माण में नारी को धुरी मानती है। आज के संदर्भ में देखें तो ये सोचने वाली बात है कि इस धुरी को मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से पहला सबसे जरूरी कदम क्या हो सकता है।
ये विचार करने योग्य प्रश्न है।